मैरकस की आत्मा के सामने एक शील्ड तैर रहा था जो कि एक सोल डिफेंस ट्रेजर था। मैरकस जैसे कल्टिवेटर के लिए भले ही वह सोल अटैक्स में विशेष रूप से निपुण न हो, लेकिन अपनी आत्मा की रक्षा के लिए उसके पास ऐसे सोल वेपन्स होना स्वाभाविक था। लेकिन शिवम का फ्यूचर बॉडी सोल अटैक्स में अत्यंत प्रवीण था और उसकी अटैक पावर मैरकस की कल्पना से कहीं अधिक थी। जैसे ही सोल स्पिरिट स्वॉर्ड उस शील्ड से टकराई, एक भारी कंपन उत्पन्न हुआ। भले ही शील्ड ने वार को रोका, लेकिन उस प्रचंड शक्ति ने शील्ड को भेदते हुए सीधे मैरकस की आत्मा पर प्रहार किया। उसकी आत्मा मानो फटने लगी और वह लगभग अपनी ओरिजिन एनर्जी पर नियंत्रण खो बैठा, जो बेकाबू होने लगी। शिवम ने इस अवसर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। ये हमला उसके और उसके फ्यूचर बॉडी के बीच एक समन्वित और अचानक किया गया आक्रमण था। मैरकस पहले ही शिवम से कई बार भिड़ चुका था, लेकिन उसने कभी उसके सोल अटैक को महसूस नहीं किया था, इसलिए वह इस बार पूरी तरह अचंभित रह गया। स्काई ब्रेकिंग स्टाइल का प्रयोग करते हुए शिवम स्वयं अपने स्पेयर के साथ एक हो गया और एक चकाचौंध करने वाली स्पेयर रेडियंस सीधा मैरकस की ओर बढ़ी। मैरकस ने एक लंबी चीख के साथ अपनी ओरिजिन एनर्जी को पूरी ताकत से सक्रिय किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक ही क्षण में स्पेयर उसके शरीर को भेद गई, उसकी ओरिजिन रूट को चकनाचूर कर दिया और उसकी आत्मा भी तुरंत नष्ट हो गई। तभी जेड टोकन अपने आप बाहर निकला और मैरकस की सोल इम्प्रिंट को अपने अंदर समा लिया। उस पर तुरंत 100 बैटल मेरिट्स जुड़ गए। एक साधारण पीक ओरिजिन कल्टिवेटर को जहां केवल 5 बैटल मेरिट्स मिलते थे, वहीं मैरकस से 100 बैटल मेरिट्स मिले, जो कि उसकी असाधारण प्रतिभा और क्षमता को दर्शाता था। अंडरवर्ल्ड जीनियस लिस्ट के 3 लक्ष्यों में से एक तिहाई कार्य अब पूरा हो चुका था। इसी समय दूसरी ओर से एक चीख सुनाई दी। वह बूढ़ा व्यक्ति जिसे बॉल ने अपनी तलवार से 2 हिस्सों में काट दिया था, अपनी आत्मा को बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था। शिवम ने बिना देर किए अपना स्पेयर फेंका, जो एक भाले की तरह सीधा उसके आगे जा पहुंचा। समय इतना सटीक था कि यदि वह आगे बढ़ता तो उसकी आत्मा सीधे स्पेयर से टकरा जाती और नष्ट हो जाती। मजबूर होकर वह रुक गया, लेकिन उसी क्षण बॉल पीछे से पहुंच गया और एक और वार में उसकी आत्मा को पूरी तरह समाप्त कर दिया। जेड टोकन ने फिर उसकी सोल इम्प्रिंट को अवशोषित किया और इस बार 30 बैटल मेरिट्स मिले। स्पष्ट था कि भले ही उस बूढ़े की ताकत मैरकस से अधिक थी, लेकिन उसकी प्रतिभा और संभावनाएं उससे कम थीं, इसलिए उसे कम बैटल मेरिट्स मिले। अब कुल बैटल मेरिट्स 166 हो चुके थे। लूट समेटने के बाद शिवम तुरंत वहां से चला गया और कुछ ही देर में 10,000 मील दूर एक पर्वत पर पहुंचा, जहां मिरियड गॉड कोको और बबल्स पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। कोको ने उत्सुकता से पूछा कि क्या उसने दोनों दुश्मनों को खत्म कर दिया। शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि यह केवल उसकी ताकत नहीं थी, बॉल की मदद भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। इसके बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया। मैरकस जैसा ओपोनेंट ही इतना कठिन था, जबकि वह केवल अंडरवर्ल्ड जीनियस लिस्ट में 188वें स्थान पर था। अभी जो टॉप 30 में था, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली और खतरनाक होगा। ये स्पष्ट था कि वर्तमान शक्ति के साथ इस मिशन को पूरा करना लगभग असंभव था। उसे और अधिक शक्तिशाली बनना ही होगा। इसी सोच के बीच उसे 9 भट्टियों जैसी संरचना वाला वह अजीब टेरेन याद आया, जहां मैरकस के लोग फॉर्मेशन बना रहे थे। उसने अपने संदेह कोको और बाकी साथियों के साथ साझा किए। कोको ने भी सहमति जताई और कहा कि वो फॉर्मेशन किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि किसी चीज को छिपाने या सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया हो सकता है। शिवम ने आगे कहा कि संभव है वे उस टेरेन के भीतर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हों। इससे सभी का ध्यान उस स्थान की ओर गया। ऐसे खतरनाक टेरेन्स अक्सर महान अवसर भी छिपाए रखते थे। वे सावधानी से वापस उसी स्थान पर पहुंचे और छिपकर निरीक्षण करने लगे। इस बार शिवम ने शिफ्टर एम्परिज मार्क का उपयोग करके और गहराई से जांच की और पाया कि फॉर्मेशन से लगभग 1,000 मील दूर जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था, जहां से लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे। स्पष्ट था कि वे लोग अंडरग्राउंड रास्ते से उस फर्नेस लाइक टेरेन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर शिवम और उसके साथी आकर्षित हुए, लेकिन सीधे उस स्थान से प्रवेश करना असंभव था, क्योंकि वहां 1,000 से अधिक ओरिजिन एक्सपर्ट्स और एक शक्तिशाली फॉर्मेशन मौजूद था। तभी कोको ने सुझाव दिया कि वे दूसरी दिशा से प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। ये टेरेन वास्तव में एक विशाल प्राकृतिक फॉर्मेशन की तरह था, क्योंकि पुराने समय में रून्स और फॉर्मेशंस की उत्पत्ति भी ऐसे ही प्राकृतिक संरचनाओं के अध्ययन से हुई थी। वे तुरंत दूसरी ओर गए और सावधानी से उस क्षेत्र के पास पहुंचे। जैसे जैसे वे फर्नेस के करीब पहुंचे, एक भयानक गर्मी और दबाव महसूस होने लगा। शिवम ने परीक्षण के लिए एक ओरिजिन लेवल डिवाइन वेपन आगे भेजा, लेकिन जमीन से निकली लाल रोशनी ने उसे तुरंत पिघला दिया। उसने कई और वेपन्स अलग अलग दिशाओं में भेजे, लेकिन हर बार वही हुआ। ये स्पष्ट हो गया कि उस क्षेत्र की शक्ति अत्यंत भयानक थी। यदि वे सीधे अंदर जाने की कोशिश करते तो उनका अंत भी उन्हीं वेपन्स की तरह हो जाता। कोको ने अपने हाथों से मुहर बनाई और अनगिनत रून्स उसके चारों ओर प्रकट होकर जमीन में समा गए। वह आंखें बंद करके शांत हो गया, मानो धरती के भीतर कुछ महसूस कर रहा हो। कुछ समय बाद उसने आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा कि जमीन के नीचे अनगिनत अर्थ वेन्स हैं जो एक दूसरे को काटती हुई ऐसे जुड़ी हुई हैं जैसे अनगिनत रून्स का जाल हो। ये सब मिलकर एक भयानक टेरेन बनाते हैं जो किसी सर्वोच्च किलिंग फॉर्मेशन की तरह है। ये लगातार बदलता रहता है, हर क्षण अपनी संरचना बदलता है, इसलिए इसका पैटर्न पकड़ना या इसे तोड़ना बेहद कठिन है। शिवम ने तुरंत शिफ्टर एम्परर्स मार्क सक्रिय किया। उसकी दृष्टि के सामने जमीन पारदर्शी हो गई और काउंटलेस लाइट स्ट्रीम्स दिखाई देने लगे जो असल में अर्थ वेन्स थे। ये वेन्स किसी जीवित प्राणी की नसों की तरह थीं जो लगातार हिलती डुलती रहती थीं, मानो उनमें जीवन हो। लेकिन चाहे वे जैसे भी हिलें, वे हमेशा एक जटिल तरीके से एक दूसरे में उलझी रहती थीं और किसी भी क्षण भयानक शक्ति उत्पन्न कर सकती थीं। यही इस टेरेन की असली भयावहता थी। शिवम ने ध्यान से देखा और अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पाया कि जब ये अर्थ वेन्स एक दूसरे में उलझती हैं तब कभी कभी कमजोर बिंदु प्रकट होते हैं, लेकिन वे केवल एक पल के लिए दिखाई देते हैं और तुरंत गायब हो जाते हैं। उसने कोको को बताया कि यहाँ वीकनेस तो है लेकिन इतनी तेजी से बदलती है कि उसे पकड़ना असंभव है। कोको की आंखें चमक उठी। उसने उत्साहित होकर कहा कि हर फॉर्मेशन का एक पैटर्न होता है, भले ही यह सब अराजक लगता हो लेकिन इसके पीछे भी एक नियम जरूर है। यदि वह उस पैटर्न को समझ ले तो वह इस टेरेन में प्रवेश और निकास दोनों कर सकता है। शिवम ने पूरी शक्ति से शिफ्टर एम्परर्स मार्क का उपयोग करना शुरू किया और जो भी वीक पॉइंट्स उसे दिखाई देते उनकी स्थिति और परिवर्तन का क्रम कोको को बताने लगा। कोको अपने असली रूप में आ गया, जमीन पर लेट गया और अपने कछुए जैसे कवच पर उभरते रून्स के माध्यम से अर्थ वेन्स की गति को समझते हुए पैटर्न निकालने लगा। दिन बीतते गए और देखते ही देखते आधा महीना गुजर गया। उधर दूसरी ओर मरिकस के लोग बेचैन होने लगे। मरिकस खुद शिवम का पीछा करने गया था लेकिन इतने दिनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। वे लगातार लोगों को भेजकर खोज करवा रहे थे। आखिरकार एक दिन उन्हें शिवम और उसके साथियों का पता चल गया। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यही वही लोग हैं जिनका पीछा मरिकस कर रहा था। अब उनके मन में शक और डर दोनों पैदा हो गए। यदि ये लोग जीवित हैं तो इसका मतलब है कि मरिकस के साथ कुछ गलत हुआ है। वे पांच लोग शिवम के पास पहुंचे और मरिकस के बारे में पूछताछ करने लगे। शिवम ने शांत भाव से कहा कि उसने उसे नहीं देखा, लेकिन सामने वाले लोग मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तुरंत और लोगों को बुला लिया। कुछ ही पलों में कुल 18 पीक ओरिजिन एक्सपर्ट्स वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने मिलकर एक संयुक्त फॉर्मेशन बनाया जो एक विशाल फरोशियस टाइगर का रूप लेकर शिवम पर टूट पड़ा। शिवम की आंखों में ठंडक आ गई। उसने स्पेयर उठाया और सीधे आकाश में उठते हुए उस टाइगर से भिड़ गया। हालांकि 18 पीक ओरिजिन एक्सपर्ट्स का संयुक्त आक्रमण बेहद शक्तिशाली था, लेकिन शिवम अब पहले जैसा नहीं था। कुछ ही दर्जन चालों में उसने उस टाइगर को तोड़ दिया। फिर वह सीधे आगे बढ़ा और फॉर्मेशन को तोड़ते हुए एक एक करके 12 लोगों को मार गिराया। बाकी 6 लोग भयभीत होकर भाग गए। जेड टोकन फिर प्रकट हुआ और 12 लोगों की सोल इम्प्रिंट्स को समाहित कर लिया, जिससे शिवम को और 6-0 बैटल मेरिट्स मिले। इसी दौरान मिरियड गॉड ने उन सभी मारे गए लोगों की ब्लड एसेंस को अवशोषित किया। उसका शरीर लाल चमकने लगा और उसकी ऑरा लगातार बदलने लगी क्योंकि वह विभिन्न जातियों के रक्त से अपने ओरिजिन रूट को परिवर्तित कर रहा था। इसके बाद शिवम और कोको फिर से अर्थ वेन्स के अध्ययन में लग गए। उधर मरिकस के बचे हुए लोग डर से कांप रहे थे। उन्होंने आपस में चर्चा की कि शिवम की ताकत उनकी कल्पना से कहीं अधिक है और शायद मरिकस सच में उसके हाथों मारा जा चुका है। उन्होंने समझ लिया कि सीधे लड़कर वे कुछ नहीं कर सकते। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस बात को छिपाएंगे और शिवम से दूर रहेंगे क्योंकि उसके खिलाफ लड़ना आत्महत्या के बराबर था। समय बीतता गया और 3 महीने गुजर गए। इन 3 महीनों के लगातार अध्ययन और विश्लेषण के बाद आखिरकार कोको ने अर्थ वेन्स के बदलाव का पैटर्न समझ लिया। उसने आंखें खोली, चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी और उसने शिवम से कहा कि अब समय आ गया है, वे इस खतरनाक टेरेन के भीतर प्रवेश कर सकते हैं। शिवम ने तुरंत निर्णय लिया कि मिरियड गॉड और बबल्स को सुप्रीम इमॉर्टल सिटी के भीतर भेज दिया जाए जबकि वह स्वयं और कोको आगे बढ़ें। उसका विचार साफ था, अगर कोई अनहोनी होती है तो कम से कम बाकी लोग सुरक्षित रहेंगे और बच निकलने का मौका रहेगा। कोको ने तेजी से अपने दिमाग में बनाए गए पैटर्न के अनुसार निर्देश देना शुरू किया। 30 मीटर बाईं ओर, फिर 007 सेकंड बाद दिशा बदलकर 23 मीटर आगे, ये सब वही नियम थे जिन्हें उसने महीनों की मेहनत से समझा था। शिवम ने एक एक निर्देश को पूरी सटीकता से याद रखा। अगले ही क्षण दोनों बिजली की गति से आगे बढ़े। वे एक के बाद एक उन वीक पॉइंट्स पर उतरते गए जो केवल एक क्षण के लिए प्रकट होते थे। उनकी चाल इतनी सटीक थी कि एक भी गलती नहीं हुई। वे मानो दो बिजली की लकीरों की तरह उस खतरनाक क्षेत्र को पार करते हुए 8 छोटे फर्नेस पीक्स को पार कर गए और अंततः बीच के सबसे बड़े फर्नेस पीक तक पहुंच गए। उसके शिखर पर एक पैसेज था और वे तुरंत उसके भीतर प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य आश्चर्यजनक था। बाहर की भयानक गर्मी के विपरीत भीतर का तापमान अपेक्षाकृत सामान्य था और वहां अर्थ वेन्स का कोई जमाव नहीं था जिससे ये स्थान सुरक्षित प्रतीत हो रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने चारों ओर देखा, कोको की आंखें फैल गईं। दीवारों पर लाल रंग की लताएं उग रही थीं जिन पर छोटे छोटे फल लगे थे। ये फल अंगूठे के आकार के थे और उनमें से एक तीव्र सुगंध निकल रही थी। उनके भीतर चमकते हुए रून साफ दिखाई दे रहे थे। यह अत्यधिक सघन ओरिजिन मार्क्स थे। शिवम की सांसें तेज हो गईं। ये ब्लडफायर बोधि था, एक अत्यंत दुर्लभ और कीमती डिवाइन अर्ब जो ओरिजिन रेल्म के कल्टिवेटर्स के लिए अमूल्य था। इसकी विशेषता ये थी कि इसमें मौजूद ओरिजिन मार्क्स को लगभग 90% तक अब्जॉर्ब किया जा सकता था, जबकि सामान्य इमॉर्टल क्रिस्टल से केवल 30% ही अब्जॉर्ब हो पाता था। यह मानो किसी सोते हुए व्यक्ति को तकिया मिल जाने जैसा था। अगर शिवम इसे प्राप्त कर लेता तो वह बहुत कम समय में अपनी कल्टिवेशन को पीक ओरिजिन रेल्म तक पहुंचा सकता था और अभय का सामना करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती। कोको खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत एक फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन उसी क्षण शिवम को खतरे का आभास हुआ। जमीन से एक लाल प्रकाश तेजी से निकलकर कोको की ओर बढ़ा। शिवम ने पूरी ताकत से चिल्लाकर उसे सावधान किया और तुरंत अपना स्पेयर फेंका। वॉर गॉड स्पेयर बिजली की तरह उस लाल रोशनी की ओर बढ़ा। लेकिन अगले ही क्षण कुछ अप्रत्याशित हुआ। वह लाल प्रकाश अचानक रुक गया और पलटकर सामने आया। अब उसका असली रूप दिखाई दिया। वह एक मानवाकार अग्नि थी जो कभी तरल आग की तरह दिखती और कभी मानव आकृति धारण कर लेती। उसने सीधे वॉर गॉड स्पेयर को पकड़ लिया। क्षण भर में स्पेयर से सिसकने की आवाज आने लगी और वह धीरे धीरे पिघलने लगा। शिवम स्तब्ध रह गया। उसका वर्षों से साथ देने वाला टॉप टियर ओरिजिन वेपन इतनी आसानी से नष्ट हो रहा था। अगले ही पल वो अग्नि आकृति चीखती हुई शिवम की ओर झपटी। शिवम ने बिना देर किए अपनी पूरी शक्ति लगा दी और लगातार दर्जनों घूंसे मारे। शक्तिशाली प्रहार उस अग्नि पर टूट पड़े, लेकिन वह उन्हें भी पिघलाती हुई आगे बढ़ती रही। कुछ ज्वालाएं शिवम के शरीर तक पहुंच गईं और उसे जलाने लगीं। लेकिन उसका फॉरबिडन ओरिजिन एनर्जी अत्यंत शक्तिशाली था। उसने उन ज्वालाओं को दबाकर बुझा दिया। इस बीच कोको ने तुरंत कई लेयर्स की फॉर्मेशंस खड़ी कर ली और पीछे हट गया। शिवम ने उसे तुरंत सुप्रीम इमॉर्टल सिटी में भेज दिया ताकि वह सुरक्षित रहे। अब वह अकेला उस भयानक अग्नि का सामना कर रहा था। तभी उसके फ्यूचर बॉडी ने उसे बताया कि यह प्राइमल केओस फायर स्पिरिट है, एक अत्यंत दुर्लभ और भयावह अस्तित्व जो केओस से उत्पन्न होता है। जब यह पूरी तरह विकसित हो जाता है तो यह सीधे इमॉर्टल रेल्म में प्रवेश कर जाता है। ये सुनकर शिवम का दिल धड़क उठा। हालांकि यह अभी पूर्ण विकसित नहीं था, लेकिन फिर भी इसकी शक्ति अत्यंत भयानक थी। लेकिन साथ ही यह एक अनमोल अवसर भी था। यदि वह इसे रिफाइन कर सके तो उसका ओरिजिन रूट एक और स्तर पर पहुंच सकता था, टॉप टियर ओरिजिन रूट जो भविष्य में उसकी इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन को अत्यंत शक्तिशाली बना देगा। लालच और जोखिम दोनों साथ खड़े थे। शिवम ने तुरंत अपना फ्यूचर बॉडी प्रकट किया। दोनों ने मिलकर उस केओस फायर स्पिरिट पर हमला किया। भीषण लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन यह आसान नहीं था। दोनों की संयुक्त शक्ति भी उस अग्नि को दबाने में असमर्थ थी। फ्यूचर बॉडी को तो विशेष रूप से सावधान रहना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी ओरिजिन रूट अभी केवल इंटरमीडिएट स्तर की थी और वह इस आग को सहन नहीं कर सकता था। आखिरकार शिवम ने बॉल को भी बुलाया। बॉल ने ह्यूमन किंग स्वॉर्ड का रूप धारण किया और प्रचंड शक्ति से हमला किया। उसके वार से केओस फायर स्पिरिट को काटा जा सकता था, लेकिन वह हर बार तुरंत वापस जुड़ जाता था मानो उसे कोई नुकसान ही न हुआ हो। लड़ाई अब एक खतरनाक गतिरोध में बदल चुकी थी। एक तरफ अपार शक्ति वाला केओस फायर स्पिरिट और दूसरी तरफ शिवम, जो अपनी पूरी क्षमता झोंकने के बावजूद अभी भी उसे पूरी तरह दबा नहीं पा रहा था। शिवम के दोनों शरीर और बॉल मिलकर भी उस प्राइमल केओस फायर स्पिरिट को दबा नहीं पा रहे थे। उल्टा वो फायर स्पिरिट जितना लड़ता जा रहा था उतना ही उग्र और शक्तिशाली होता जा रहा था। पूरे फर्नेस माउंटेन के भीतर अग्नि लहरों की तरह फैल चुकी थी, मानो पूरा स्थान एक जीवित नरक में बदल गया हो। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि ब्लडफायर बोधी पर उस आग का कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा वे और चमकने लगे थे मानो आग ही उनकी ऊर्जा का स्रोत हो। इसी बीच फ्यूचर बॉडी ने तुरंत स्थिति को समझा और कहा कि प्राइमल केओस फायर स्पिरिट अभी पूरी तरह मच्योर नहीं हुआ है, इसलिए उसका शरीर भले ही अत्यंत शक्तिशाली हो लेकिन उसकी सोल स्पिरिट अभी कमजोर है। यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। तुरंत योजना बनाई गई। शिवम का प्रेजेंट सेल्फ और बॉल सामने से उसे रोकेंगे और उलझाए रखेंगे, जबकि फ्यूचर बॉडी अपनी सबसे ताकतवर सोल अटैक्स का उपयोग करेगा। जैसे ही सोल स्पिरिट बैटल स्वॉर्ड ने फायर स्पिरिट पर वार किया, उसका असर तुरंत दिखा। प्राइमल केओस फायर स्पिरिट ने दर्द भरी चीख निकाली, उसका शरीर कांप गया और वह पीछे हट गया। ये साफ था कि उसकी असली कमजोरी सोल पर है। ये देखकर फ्यूचर बॉडी ने बिना रुके लगातार सोल अटैक्स शुरू कर दिए। असंख्य सोल स्वॉर्ड्स एक के बाद एक फायर स्पिरिट पर गिरने लगे। दूसरी ओर शिवम और बॉल पूरी ताकत से उसे रोक कर रखे हुए थे, उसे भागने या काउंटर अटैक करने का मौका नहीं दे रहे थे। धीरे धीरे फायर स्पिरिट कमजोर पड़ने लगा, उसकी लपटें सिकुड़ने लगी, आसपास की आग भी खत्म होने लगी और अंत में वह सिमट कर मुट्ठी के आकार की एक ऊर्जा गेंद बन गया। तुरंत शिवम आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। उसने अपनी फॉरबिडन ओरिजिन एनर्जी से उसे घेर लिया और रिफाइन करना शुरू कर दिया। लेकिन यह आसान नहीं था। फायर स्पिरिट भीतर से भयंकर ऊर्जा छोड़ रहा था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। शिवम बैठ गया और पूरी एकाग्रता से रिफाइन करने लगा। उसके सामने उसका फ्यूचर बॉडी भी बैठ गया और दोनों ने मिलकर रिफाइनिंग शुरू की। दोनों की शक्तियां अलग थीं लेकिन एक ही मूल से जुड़ी होने के कारण वे परफेक्टली सिंक्रोनाइज हो रही थीं। उनकी संयुक्त शक्ति कई गुना बढ़ गई। फिर भी कुछ देर बाद शिवम ने महसूस किया कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। तभी अचानक उसके भीतर एक हलचल हुई। उसने हाथ उठाया और पर्पल कॉपर कफन को बाहर निकाला। कफन का ढक्कन खुला और भीतर से उसका तीसरा रूप, पास्ट सेल्फ, बाहर आ गया। ये रूप पहले से बिल्कुल अलग था। उसका शरीर अधिक मजबूत, संतुलित और विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ था। उसके अंदर की ऊर्जा इतनी घनी थी कि ऐसा लगता था कि वह एक मौके में आकाश को भी चीर सकता है। तीनों रूपों के बीच तुरंत संपर्क स्थापित हो गया और पास्ट सेल्फ ने अपनी सारी स्मृतियां और अनुभव दोनों को साझा कर दिए। अब सच्चाई सामने आई। उस पर्पल कॉपर कॉफिन के भीतर एक डाइंग इमॉर्टल था, सॉसरर ट्राइब का एक महान अस्तित्व जो पिछले युग के युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसने अपनी अंतिम शक्ति से जीवित रहने की कोशिश की लेकिन अंततः समझ गया कि अब उसका अंत निश्चित है। उसने अपनी पूरी इनहेरिटेंस किसी योग्य उत्तराधिकारी को देने का निर्णय लिया और उसने शिवम के पास्ट सेल्फ को चुना क्योंकि उसका कल्टिवेशन पाथ सॉसरर ट्राइब के मूल से मेल खाता था। सालों तक पास्ट सेल्फ ने उस इमॉर्टल के मार्गदर्शन में कल्टिवेशन किया और अब वह पूरी तरह विकसित होकर बाहर आया था। अब तीनों शरीर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, एक साथ थे। तीनों ने मिलकर रिफाइनिंग शुरू की। जैसे ही उनकी शक्तियां एक साथ जुड़ी, एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। तीनों की ऊर्जा आपस में मिलकर एक नई शक्ति में बदल गई जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और गहरी थी। यह मात्र जोड़ नहीं था बल्कि एक क्वालिटेटिव एवोल्यूशन था। प्रबल ऊर्जा के दबाव में प्राइमल केओस फायर स्पिरिट चीख उठा। उसने पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन अब वह तीनों के संयुक्त बल के सामने बेबस था। धीरे धीरे वह रिफाइन होने लगा। उसका रूप टूटकर शुद्ध ऊर्जा में बदल गया और तीनों शरीरों के भीतर प्रवाहित होने लगा। तुरंत प्रभाव दिखाई देने लगा। तीनों को महसूस हुआ कि उनके ओरिजिन रूट्स बदलने लगे हैं, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। शिवम के भीतर उत्साह की लहर दौड़ गई। ये सच में काम कर रहा था। समय बीतता गया। एक दिन के भीतर प्राइमल केओस फायर स्पिरिट का लगभग पांचवां हिस्सा रिफाइन हो चुका था। इस ऊर्जा का अधिकांश भाग फ्यूचर बॉडी को मिला और तभी पहला ब्रेक थ्रू हुआ। फ्यूचर बॉडी का ओरिजिन रूट इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल में इवॉल्व हो गया। उसकी ओरिजिन एनर्जी तुरंत बदल गई। अब वह पहले से अधिक कंडेंस्ड, पावरफुल और गहरी हो चुकी थी। ये केवल शुरुआत थी। आगे क्या होने वाला था वह और भी ज्यादा विस्फोटक होने वाला था। एक दिन बाद शिवम के पास्ट सेल्फ का ओरिजिन रूट भी इवॉल्व होकर इंटरमीडिएट से एडवांस स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद जो रिफाइंड एनर्जी बची थी वह पूरी तरह उसके करंट बॉडी को दी गई। फिर अगले तीन दिनों में बाकी बचे हुए प्राइमल केओस फायर स्पिरिट भी पूरी तरह रिफाइन हो गए और अंततः शिवम के वर्तमान शरीर का ओरिजिन रूट एडवांस से उठकर सीधे टॉप ग्रेड ओरिजिन रूट में परिवर्तित हो गया। तीनों शरीरों के चेहरों पर संतोष और उत्साह साफ झलक रहा था। पास्ट और फ्यूचर बॉडीज के ओरिजिन रूट्स अब एडवांस स्तर पर पहुंच चुके थे जिससे उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी और वे अब किसी भी तरह से एक दूसरे से कम नहीं थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शिवम का मुख्य ओरिजिन रूट अब पीक स्तर पर पहुंच चुका था। टॉप ग्रेड ओरिजिन रूट का मतलब था ओरिजिन रूट की अंतिम सीमा। कई नाइन्थ ट्रिब्यूलेशन क्वासी इमोर्टल्स भी अनेक इमोर्टल ट्रिब्यूलेशन के बाद भी अपने ओरिजिन रूट को इस स्तर तक नहीं पहुंचा पाते थे, लेकिन शिवम ने यह उपलब्धि ओरिजिन रेल्म में ही हासिल कर ली थी। पूरे यूनिवर्स ओशन में ये बेहद दुर्लभ था। अब उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ में जबरदस्त वृद्धि हो चुकी थी। अगर वह अब कल्टिवेटर ब्लैक गोल्ड जैसे प्रतिद्वंद्वी से भिड़ता तो उसे आसानी से दबा सकता था या मार भी सकता था, और अगर तीनों शरीर एक साथ मिलकर हमला करें तो उसकी शक्ति और भी कई गुना बढ़ जाती। शिवम की आंखों में ठंडी चमक उभरी जब उसने सतीश और शेरा को याद किया। पहले जहां उसे उनसे बचना पड़ता था, अब स्थिति उलट चुकी थी। अब वह न केवल उनका सामना कर सकता था बल्कि उन्हें मारने का भी पूरा विश्वास रखता था। तीनों शरीर एक दूसरे को देख मुस्कुराए और तुरंत एक हो गए। पास्ट और फ्यूचर बॉडीज प्रकाश की किरण बनकर करंट बॉडी में समा गए और ओरिजिन रूट के दोनों ओर स्थित हो गए। यह न केवल ओरिजिन रूट की सुरक्षा के लिए था बल्कि एक छिपी हुई चाल भी थी। अब कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि उसके भीतर दो और शक्तिशाली रूप छिपे हुए हैं। यह उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था। इसके बाद उसने कोको बबल्स और मेरियड गॉड को सुप्रीम इमॉर्टल सिटी से बाहर निकाला। उसने बताया कि प्राइमल केओस फायर स्पिरिट को वह पूरी तरह रिफाइन कर चुका है और अब अगला कदम ब्लड फायर बोधि को यहीं पर रिफाइन करके अपनी कल्टिवेशन को और ऊपर उठाना है। सबके चेहरे चमक उठे। कोको ने बिना समय गनवाए कई ब्लड फायर बोधि तोड़कर सीधे मुंह में डाल लिए और रिफाइनिंग शुरू कर दी। बबल्स और मिरियड गॉड भी तुरंत लग गए। शिवम ने भी एक साथ 10 ब्लड फायर बोधि तोड़े, जिनमें से 6 उसने अपने पास्ट और फ्यूचर बॉडीज को दे दिए और 4 खुद लेकर रिफाइनिंग शुरू कर दी। उसे यहीं पर रिफाइन करने के दो कारण थे। पहला, ब्लड फायर बोधि अपनी जगह से बहुत दूर ले जाने पर अपना प्रभाव खो देता था। दूसरा, ये स्थान पूरी तरह सुरक्षित था और यहां बिना किसी बाधा के क्लोज डोर कल्टिवेशन किया जा सकता था। समय बीतता गया। ब्लड फायर बोधि में मौजूद ओरिजिन मार्क्स बेहद सघन और शक्तिशाली थे, जिससे कल्टिवेशन तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन उसमें मौजूद ब्लड और फायर एनर्जी को पहले शुद्ध करना पड़ता था, जो आसान नहीं था। आधे महीने में कुछ बोधि रिफाइन हुए, फिर और तोड़े गए और प्रक्रिया चलती रही। देखते ही देखते 3 साल बीत गए और अंततः फर्नेस माउंटेन के सभी ब्लड फायर बोधि पूरी तरह रिफाइन हो गए। परिणाम चौंकाने वाले थे। कोको बबल्स और मिरियड गॉड तीनों की कल्टिवेशन लेट ओरिजिन पीक तक पहुंच गई, यानी उन्होंने एक साथ 2 स्तर पार कर लिए। शिवम ने भी बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल किया। उसके तीनों शरीर पीक ओरिजिन रेल्म तक पहुंच गए। अब उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक भयानक हो चुकी थी। अब वो निडर था। ओरिजिन बैटलफील्ड में अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। उसने अनुमान लगाया कि अब वो फर्स्ट ट्रिब्यूलेशन क्वासी इमोर्टल को भी मार सकता है, और अगर तीनों शरीर मिलकर हमला करें तो सेकंड ट्रिब्यूलेशन क्वासी इमोर्टल को भी चुनौती दे सकता है, बशर्ते वो कोई असाधारण प्रतिभा न हो। कोको उत्साह से भर गया और बोला कि अब अभय को मारने का समय आ गया है। फर्नेस माउंटेन में अब कोई और ट्रेजर नहीं बचा था, इसलिए सबने बाहर निकलने का फैसला किया। कोको ने अर्थ वेन्स का पूरा पैटर्न समझ लिया था, इसलिए बाहर निकलना आसान हो गया। बाहर आने पर उन्होंने देखा कि वसीम के लोग अभी भी फॉर्मेशन लगाकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। शिवम ने कुछ देर देखा लेकिन सीधा टकराव करने का फैसला नहीं किया। इतनी बड़ी फॉर्मेशन को तोड़ना अभी भी जोखिम भरा था। इसके बाद वे बैटलफील्ड के अंदर गहराई में बढ़ते गए। वहां लगातार लड़ाइयां हो रही थीं। कई अंडरवर्ल्ड एक्सपर्ट्स ने उन पर हमला किया, लेकिन अंत में सभी उनके हाथों मारे गए और बैटल मेरिट्स में बदल गए। शिवम हर लड़ाई में खुद शामिल नहीं होता था। वह कमजोर दुश्मनों को कोको बबल्स और मिरियड गॉड पर छोड़ देता था, जिससे उनकी समझ और कॉम्बैट स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ती गई। खासतौर पर मिरियड गॉड की ग्रोथ बेहद तेज थी। हर बार नए ब्लड एसेंस को अब्सॉर्ब करने पर उसका ओरिजिन रूट धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था। समय तेजी से बीतता गया। 1 साल और गुजर गया। अब उन्हें बैटलफील्ड में आए 4 साल से ज्यादा हो चुके थे। शिवम ने 3000 बैटल मेरिट्स में से 2500 से अधिक हासिल कर लिए थे। अब केवल 500 बाकी थे, लेकिन असली समस्या अभी भी बाकी थी। उसने अभी तक केवल एक ही जीनियस को मारा था, वसीम। अभी 2 और चाहिए थे, जिनमें सबसे खतरनाक था अभय। इसी बीच उन्हें खबर मिली कि पास के विंटर माउंटेन में अंडरवर्ल्ड का एक जीनियस फूशान मौजूद है, जो जीनियस रैंकिंग में 89वें स्थान पर है। शिवम की आंखों में चमक उभरी। यह अगला लक्ष्य हो सकता था। सारांश अंडरवर्ल्ड के ओरिजिन मॉन्स्ट्रस टैलेंट रैंकिंग में 89वें स्थान पर था। वह पूरे अंडरवर्ल्ड में बेहद प्रसिद्ध था और एक शीर्ष स्तर का प्रतिभाशाली योद्धा माना जाता था जिसमें भविष्य में इमॉर्टल किंग बनने की क्षमता तक थी। वह ईविल यिन ग्रेट कॉस्मोस से आया था जो अंडरवर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली कॉस्मोस में पांचवें स्थान पर था। उसकी ताकत इतनी थी कि ओरिजिन रेल्म में उसके सामने लगभग कोई टिक नहीं सकता था और उसे हराना तो और भी मुश्किल था। अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास होने के कारण वह केवल कुछ दर्जन अधीनस्थों को साथ लाया था और विंटर माउंटेन पर एक साधारण ओरिजिन लेवल फॉर्मेशन स्थापित कर रखा था। स्वयं वह उस पर्वत के भीतर अवसरों की खोज में लगा हुआ था। इसी दौरान अचानक आकाश में कुछ आकृतियां प्रकट हुई, शिवम और उसके साथी। शिवम ने एक नज़र में फॉर्मेशन को परखा और कहा कि यह 3-6 लोगों द्वारा स्थापित ओरिजिन लेवल फॉर्मेशन है जो काफी मजबूत है। यह कोई चलायमान संयुक्त आक्रमण गठन नहीं था बल्कि स्थिर फॉर्मेशन था जिसमें 3-6 लोग उसकी आंख बनकर शक्ति संचालित कर रहे थे। कोको ने तुरंत आगे बढ़कर कहा कि वह इस छोटे स्तर के फॉर्मेशन को तोड़ सकता है। उसने हाथों से सील्स बनाए और असंख्य रून्स चारों ओर फैलाकर फॉर्मेशन के भीतर समाहित कर दिए। कुछ ही क्षणों में स्थिति पलट गई। रून्स ने दुश्मन के फॉर्मेशन को भीतर से डिस्टेबलाइज कर दिया और एक जबरदस्त विस्फोट के साथ उसमें बड़ा छेद कर दिया। जैसे ही गैप बना, शिवम बिजली की तरह अंदर घुसा। उसका स्पेयर घूमता हुआ निकला और 3 पीक ओरिजिन एक्सपर्ट्स को एक ही वार में उड़ा दिया। फिर उसने बिना रुके लगातार वार किए और पलक झपकते ही 8 और शक्तिशाली एक्सपर्ट्स मारे गए। ये सभी पीक ओरिजिन रेल्म के विशेषज्ञ थे जिनमें कई तो हेवनली पैलेस के मास्टर्स से भी अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन शिवम के सामने वे बिल्कुल बेबस थे। बाकी लोग डरकर भागने लगे और विंटर माउंटेन के भीतर सारांश के पास शरण लेने लगे। तभी पर्वत की गहराइयों से एक भयंकर आभा फूटी। एक युवा व्यक्ति प्रकट हुआ, काले वस्त्रों में चारों ओर भयानक यिन एनर्जी के साथ। यही था सारांश। उसके आते ही उसके अधीनस्थों में आशा जाग गई। शिवम ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा कि वह उसका सिर लेने आया है। सारांश ने तुरंत हमला किया। उसकी यिन एनर्जी से 12 भयानक दैत्याकार प्राणियों का निर्माण हुआ जो शिवम पर टूट पड़े और साथ ही उसने अपनी ईविल स्वॉर्ड से घातक वार किया। लेकिन शिवम का स्पीयर आगे बढ़ा और सब कुछ चीरता हुआ निकल गया। वे सभी दैत्य क्षण भर में नष्ट हो गए और स्पीयर की शक्ति सीधे सारांश से टकराए। एक ही टकराव में सारांश पीछे धकेल दिया गया। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, ओरिजिन टेक्निक को चरम तक पहुंचाया, लेकिन फिर भी शिवम के सामने टिक नहीं पाया। शिवम ने महसूस किया कि सारांश की ताकत कल्टिवेटर ब्लैक गोल्ड से भी कम है। अब ये लड़ाई उसके लिए कोई चुनौती नहीं थी। उसने अपनी पूरी शक्ति प्रकट की और आकाश को धक देने वाली विशाल स्पेयर शैडोज उत्पन्न कर दी। ये ऐसे थे मानो आकाश से स्तंभ गिर रहे हों। सारांश ने पूरी ताकत से प्रतिरोध किया, लेकिन केवल पहला प्रहार ही रोक पाया और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके शरीर की हड्डियां टूट गई, मांसपेशियां फट गईं और वह खून उगलने लगा। अब उसे समझ आ गया कि वह मरने वाला है। उसने अंतिम बार पूछा कि सामने वाला कौन है। शिवम ने शांत स्वर में अपना नाम बताया। ये सुनकर सारांश स्तब्ध रह गया। प्राइमीवल यूनिवर्स का कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है, यह उसके लिए अकल्पनीय था। अगले ही क्षण शेष स्पेयर शैडोज उस पर गिरे और उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। उसका शरीर, आत्मा, सब कुछ धूल बन गया। सिर्फ वही नहीं, उसके बाकी सभी अधीनस्थ भी उसी हमले में मारे गए। एक ही युद्ध में शिवम ने अंडरवर्ल्ड के एक शीर्ष प्रतिभाशाली योद्धा को समाप्त कर दिया। अब उसकी ताकत केवल बड़ी ही नहीं थी, बल्कि वह बैटलफील्ड के सबसे खतरनाक अस्तित्वों में से एक बन चुका था।